ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से निर्वाचन तैयारी, व्यवस्थापन और आचार संहिता लगायत के विषय पर आयोग के पदाधिकारियों ने किया विचार विमर्श। आगामी माघ 3 गति से निर्वाचन आचार संहिता होगी लागू। 40 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक विक्री वितरण न करने का वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग का निर्देश। और ईरान में उग्र प्रदर्शन के बीच सरकार द्वारा इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय फोन सेवा बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ चुनाव की तैयारी और चुनाव प्रबंधन से जुड़े विषय पर निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने चर्चा की है। निर्वाचन आयोग के कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त राम प्रसाद भंडारी सहित आयुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आज प्रधानमंत्री कार्की से मुलाकात कर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए जारी होने वाली सूचना, आचार संहिता, सूचना प्रबंधन और तैयारियों पर विचार विमर्श किया। आयोग ने प्रधानमंत्री कार्की को जानकारी दी कि आगामी माघ 3 से चुनाव आचार संहिता लागू की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाले नकारात्मक संदेशों और गतिविधियों को नियंत्रित करने की जानकारी दी है। आयोग में आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्तियों, गलत व्याख्याओं, डीप फेक, फर्जी वेबसाइट या अकाउंट, निंदा या मानहानि जैसे विषयों की निगरानी की जाएगी और गैरकानूनी गतिविधियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। प्रवक्ता भट्टराय ने जानकारी दी कि सोशल मीडिया निगरानी सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लाया गया है। आयोग के अनुसार इसी सप्ताह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालक मेटा और टिकटॉक के प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद किया गया है। आयोग ने न्याय परिषद के परामर्श पर 77 जिला न्यायाधीशों को मुख्य निर्वाचन अधिकृत पद पर नियुक्त किया है। इसी तरह न्याय सेवा आयोग के परामर्श पर 88 न्याय सेवा के राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को आज से लागू होने वाली व्यवस्था के तहत निर्वाचन अधिकृत पद पर नियुक्त किया गया है। आयोग के अनुसार मतदाता नामावली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित मतपत्रों की छपाई का कार्य जारी है। राष्ट्रीय सभा की सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति ने बारूदी सुरंगों और विस्फोटकों पदार्थों से संबंधित विषयों पर सरोकार वाले निकायों के साथ चर्चा की है। समिति की आज हुई बैठक में चुनाव के दौरान उत्पन्न हो सकने वाली संभावित सुरक्षा चुनौतियों, बारूदी सुरंगों के जोखिम तथा उनके न्यूनीकरण के उपायों पर केन्द्रित होकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में समिति के सभापति माया प्रसाद शर्मा ने चुनाव को भयमुक्त, शांत और सुरक्षित माहौल में सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अपनाई गई तैयारियों, योजनाओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षा निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों को समय प्रदान किया था। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा है कि वर्तमान सरकार में शामिल मंत्रियों को किसी भी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव दिखाने की कोई छूट नहीं है। गृह मंत्रालय और बागमती प्रदेश के आंतरिक मामलों तथा कानून मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी में मंत्री अर्याल ने बताया कि वर्तमान सरकार का मुख्य दायित्व निर्धारित तिथि पर चुनाव सम्पन्न कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह जुट चुकी है, इसलिए सभी संबंधित पक्षों से उन्होंने आग्रह किया कि निर्धारित तिथि पर ही चुनाव होने को लेकर किसी प्रकार का संदेह न रखे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री डॉ सुधा शर्मा गौतम ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा में सुधार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय और स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के आयोजन तथा जर्मन विकास सहयोग संस्था के सहयोग से आज काठमांडू में आयोजित स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यक्रम में मंत्री गौतम ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की कमियों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों और सरोकार वालों के साथ निरंतर चर्चा की जा रही है। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के निदेशक डॉ रघुराज काफले ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित नहीं किया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको 4G।
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने सभी मंत्रालयों में एकीकृत कार्यालय प्रबंधन प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू कराने के लिए सूचना प्रविधि विभाग को निर्देश किया है। संचार मंत्रालय के अंतर्गत सूचना प्रविधि विभाग में आज आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री खरेल ने कहा कि मंत्रालयों की सेवा प्रवाह को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए सभी मंत्रालयों और निकायों को कागज रहित बनाना आवश्यक है। शिक्षा विज्ञान एवं प्रविधि मंत्री महावीर पून ने कहा है कि केवल विदेश भ्रमण करने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आता, इसलिए मंत्री के हैसियत से वे विदेश दौरे पर जाने के इच्छुक नहीं हैं। मंत्री पून ने बताया कि इससे पहले उन्हें 3 विदेशी यात्राओं और कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन वे नहीं गए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में भी उन्हें 2 निमंत्रण मिले हैं जिनमें वे शामिल नहीं होंगे। ये बात उन्होंने सामाजिक माध्यमों के जरिए सार्वजनिक की है। आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्लास्टिक तथा प्लास्टिक जनित वस्तुओं की बिक्री वितरण पर सख्ती करने का निर्णय किया है। विभाग ने एक साथ 19 प्लास्टिक उद्योगों और दुकानों का निरीक्षण कर 40 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक की बिक्री वितरण आगे से न करने का निर्देश किया है। इसके अलावा विभाग ने अन्य सुधारात्मक निर्देश भी जारी किए हैं। विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण आयन 2075 और उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 2076 के अनुसार आवश्यक देश और कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी है। विभाग ने नीरोज प्लास्टिक उद्योग, एमएन प्लास्टिक उद्योग, नेशनल प्लास्टिक इंडस्ट्री, कुवर फर्नीचर उद्योग और दीक्षा स्टोर को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसी तरह पशुपतिनाथ एंटरप्राइजेज, यूनिवर्सल ट्रेडर्स सहित अन्य प्लास्टिक उद्योगों, दुकानों और आयातकर्ताओं को भी 40 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग की बिक्री वितरण न करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये कदम पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उठाया गया है। निकपा एमाले की दूसरी केंद्रीय समिति की बैठक कल होने जा रही है। एमाले केंद्रीय प्रचार एवं प्रकाशन विभाग प्रमुख मीन बहादुर शाही के अनुसार कल सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव में पार्टी की रणनीति तथा समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान में बढ़ते प्रदर्शन के बीच सरकार ने इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय फोन सेवाओं को बंद कर दिया है। स्थानीय मीडिया और निगरानी समूह के अनुसार ये कदम देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों को रोकने और सूचना प्रवाह को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत उठाया गया है। प्रदर्शन आर्थिक संकट और महंगाई के विरोध में शुरू हुए थे और कई शहरों में तेजी से फैल रहे हैं। नेट ब्लॉक्स जैसे ऑनलाइन निगरानी समूह ने बताया कि इंटरनेट बंदी व्यापक स्तर पर लागू की गई है, जिससे नागरिकों के लिए ऑनलाइन संचार और बाहरी दुनिया से संपर्क करना मुश्किल हो गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से निर्वाचन तैयारी, व्यवस्थापन और आचार संहिता लगायत के विषय पर आयोग के पदाधिकारियों ने किया विचार विमर्श। आगामी माघ 3 गति से निर्वाचन आचार संहिता होगी लागू। 40 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बिक्री वितरण न करने का वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग का निर्देश और ईरान में उग्र प्रदर्शन के बीच सरकार द्वारा इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय फोन सेवा बंद। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार। शुभरात्रि।